समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, आप सुनना शुरू कर चुके हैं आकाशवाणी गोल्ड का कार्यक्रम आज सवेरे। श्रोताओं, रोजाना की तरह आज भी हम तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर आ गए हैं आपके पास। इसके अलावा इतिहास की भी होगी बात और जानेंगे कि आज का दिन खास क्यों है, साथ ही आज कुछ खास हस्तियों को भी हम याद करेंगे। तो कार्यक्रम के इस अंक में मैं हूं सरफिरोजी और मेरे साथ हैं शगुन चोपड़ा। गुड मॉर्निंग शगुन।
गुड मॉर्निंग सरफिरोजी। अ हार्ट फेल्ट हेलो अगेन। गुड मॉर्निंग, गुड डे एवरीबॉडी। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स। यू आर ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज। दिस इज आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे। एंड एज सरफिरोजी वॉज टेलिंग अस, देयर इज अ लॉट दैट वी हैव एक्चुअली प्लान्ड फॉर यू ऑल लिसनर्स। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। एंड बिफोर दैट,
जी बिल्कुल शगुन, आगे बढ़ने से पहले जिक्र कर लेते हैं एक खास दिन का।
जी,
चल 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 मेरे साथी, ओ मेरे हाथी, चल ले चल खटारा खींच के चल यार, धक्का मार, बंद है मोटर कार, चल यार।
जी श्रोताओं, आज विश्व हाथी दिवस है। हर साल 12 अगस्त को हाथियों की रक्षा और संरक्षण के लिए ये दिवस मनाया जाता है। हाथी ज्ञान, शक्ति और संतुलन के प्रतीक माने जाते हैं और इस पहल का उद्देश्य एशियाई और अफ्रीकी दोनों हाथियों की घटती संख्या और उनकी समस्याओं के प्रति लोगों के बीच जागरूकता फैलाना है।
वेल यस, वर्ल्ड एलिफेंट डे। In listeners, it is observed annually today. Today it's August 12, and as Sir Firozi was telling us, this is specially dedicated to elephants, the magnificent animal, I must say, for raising awareness about the urgent plight of elephants.
जी बिल्कुल शगुन, और भारत में हाथियों की का खास महत्व है क्योंकि हम इन्हें भगवान गणेश का स्वरूप मानकर इनकी पूजा करते हैं और ये न सिर्फ ताकत और बुद्धिमत्ता के प्रतीक होते हैं बल्कि जैसा कि हमने बात की कि हमारी संस्कृति, परंपरा और भावनाओं का भी ये अहम हिस्सा होते हैं।
वेल यस, एंड ऑन अ वेरी लाइटर नोट, वेल एलिफेंट्स दे आर प्लेफुल, यू कैन इमेजिन लिसनर्स, वेल वी हैव सीन वीडियोस ऑफ एलिफेंट्स डेडिकेटेड टू देम। एलिफेंट्स दे लव टू प्ले एंड नॉट just as youngsters, fully grown elephants also they,
और इनका जो बर्ताव जैसा आपने बताया कि बहुत लाइट हार्टेड प्लेफुल होता है, तो इंसानों का और हाथियों का रिश्ता भी बहुत ही ज्यादा प्रेम भरा रहता है।
They throw water into the air, roll on the ground and even chase other animals simply for fun.
जी बिल्कुल, लेकिन शगुन, इतना अच्छा बर्ताव होने के बावजूद या इंसान के साथ हाथियों का जो रिश्ता है प्रेम भरा होने के बावजूद, इंसान जो है अपनी सुविधाओं के लिए जंगल को खत्म करते जा रहे हैं, उनके बीच से रास्ता बना रहे हैं जिसकी वजह से हाथियों का जो आवास है वो छिनता जा रहा है। उसके अलावा जलवायु परिवर्तन के कारण हाथियों को खाना और पानी खोजने में तकलीफ होती है जिसका असर उनकी सेहत पर पड़ता है। और एक और बहुत ही नेगेटिव चीज जो होती है वो ये कि दांतों के लिए लोग इनके दांतों के लिए इनका शिकार करते हैं। और जब हम रिसर्च कर रहे थे शगुन विश्व हाथी दिवस पर, तो हमने जाना कि पर्यावरण में किस तरह अहम भूमिका निभाते हैं हाथी।
Yes, exactly. I would like to dwell on that particular point. They play an important role in balancing the ecosystem, also for conservation, ethical treatment. This specific day, it promotes conservation, ethical treatment and protection of elephant habitats. Well, more on that in the program. First, let's begin with the headlines.
जी बिल्कुल शगुन।
Prime Minister Narendra Modi said that India is committed to the early and peaceful resolution of Ukraine-Russia conflict and will make every possible contribution in this regard. Holding a telephonic conversation with President of Ukraine Volodymyr Zelensky, Prime Minister said India's consistent position on the need for an early and peaceful resolution of the conflict. In a social media post, Mr. Modi said India remains committed to making every possible contribution in this regard, as well as to further strengthening bilateral ties with Ukraine. Prime Minister Modi also heard Mr. Zelensky's perspectives on recent developments. Prime Minister Modi spoke to President of Ukraine ahead of US President Donald Trump and Russian President Vladimir Putin talks, which will be held in Alaska on next Friday, to discuss the future of the war in Ukraine. Mr. Trump announced the meeting on social media, and it was later confirmed by a Kremlin spokesperson who said the location was quite logical given Alaska's relative proximity to Russia.
भारत ने संभावित परमाणु धमकी पर पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर की टिप्पणी की कड़ी निंदा की है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान में कहा कि भारत पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि वो किसी भी परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा. उन्होंने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भारत के सभी आवश्यक कदम जारी रहेंगे. बयान में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इन टिप्पणियों में निहित गैर जिम्मेदारी पर विशेष रूप से पाकिस्तानी सेना के आतंकवादी समूहों के साथ घनिष्ठ संबंधों को देखते हुए अपने निष्कर्ष निकालने की भी चेतावनी दी गई है. ये टिप्पणियां पाकिस्तान की परमाणु कमान और नियंत्रण के बारे में लंबे समय से चली आ रही चिंताओं को बढ़ाती हैं. आधार चेहरा प्रमाणीकरण प्रणाली ने 10 अगस्त 2025 तक 2 अरब लेनदेन का आंकड़ा पार कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है. केवल 6 महीनों में लेनदेन की संख्या 1 अरब से दोगुनी हो गई है. इस प्रणाली से बिना किसी दस्तावेज या शारीरिक संपर्क के केवल चेहरे का उपयोग करके पहचान सत्यापित की जाती है. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण चेहरा प्रमाणीकरण को प्रोत्साहन देने के लिए सरकारी विभागों, बैंकों और सेवा प्रदाताओं के साथ मिलकर काम कर रहा है. इस उपलब्धि के बारे में प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुवनेश कुमार ने कहा कि इतने कम समय में 2 अरब आधार चेहरा प्रमाणीकरण लेनदेन तक पहुंचना आधार के सुरक्षित, समावेशी और नवीन प्रमाणीकरण व्यवस्था में लोगों का विश्वास जताता है.
Union Minister for Road Transport and Highways Nitin Gadkari has said that India can become an energy exporting nation if the production and use of biofuels and green hydrogen are increased. Mr. Gadkari was speaking at the inauguration of the Bioverse initiative in Pune yesterday to mark World Biofuel Day. The minister said the biofuel revolution will play a crucial role in reducing imports and boosting the rural economy. He also stressed the need for more research into producing clean fuels like green hydrogen from agricultural produce.
मैंने कहा हमारे यहाँ सब शुगर फैक्ट्री वालों को बॉयलर में बगास जलाने के बजाय बगास से सीएनजी बनाओ बायोडाइजेस्टर में डालकर, और सीएनजी के बजाय अगर आगे चल जाए तो हाइड्रोजन बनाओ. हमने अभी रिसेंटली हाइड्रोजन का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया 10 रूट पर. तो हाइड्रोजन इज अ फ्यूल फॉर द फ्यूचर, और हाइड्रोजन के कारण जो ग्रीन हाइड्रोजन है, मुझे लगता है कि हमारे देश की तस्वीर बदल जाएगी.
Listeners, let's also provide you weather updates. Well, the India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy to very heavy rainfall over Uttarakhand and Himachal Pradesh during the next 7 days. We have more details on this from our correspondent. Listen in.
According to IMD, heavy to very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Arunachal Pradesh, Assam and Meghalaya is expected till Thursday. The IMD has issued red alert for extremely heavy rainfall in these states along with Uttarakhand and Himachal Pradesh today. The weather agency also predicted very heavy rainfall at isolated places over Bihar and Odisha. IMD further said that the thunderstorm accompanied with gusty winds is expected at isolated places over Bihar, Jammu and Kashmir, Ladakh, Jharkhand and Andaman and Nicobar Islands today. Meanwhile, Delhi NCR received rainfall in the early hours today. Ishani Yadav, Akashvani News, Delhi.
Now, we are providing you listeners the sports updates. First, in boxing, India's campaign at the Asian Under-19 and Under-22 Boxing Championships 2025 ended on a high note with Ritika winning gold in the women's 80+ kg category yesterday. The event held in Bangkok saw India's teams win a total of 27 medals across both age groups. The Under-19 team performed strongly, finishing second overall with 14 medals, including 3 gold, 7 silver and 4 bronze. While the Under-22 team secured 13 medals, including 1 gold, 4 silver and 8 bronze, with Ritika being the only gold medalist in this group. Next, our update is from Wushu. In Wushu, India's Namrata Batra is set to face Mengyui Chen of China in the women's 52 kg final at World's Game 2025 in Chengdu, China this evening. The much-anticipated gold medal match is scheduled to begin at 5:30 p.m. Indian Standard Time. Namrata made history by reaching the final after defeating the Philippines' Crisan Faith Culado 2-0 yesterday. She also secured at least a silver medal, guaranteeing India its first ever World Games medal in Wushu. Earlier in the competition, Rishabh Yadav earned India's first individual medal at the Games by winning bronze in the men's compound archery event. Namrata comes into the final on a high, having clinched gold at last month's Moscow Star International Wushu Championship ahead of the Games, and she will be aiming to add the prestigious World Games gold medal to her growing list of achievements.
और श्रोताओं, अब आपको देंगे महानगरों का हाल। शुरुआत कर रहे हैं चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद से। तो शगुन, क्या खबर है इन महानगरों से?
जी सर फिरोजी, आई एम बिगिनिंग विद चेन्नई फर्स्ट। इंडियन एयरफोर्स इज कंडक्टिंग एन ओपन रिक्रूटमेंट रैली इन चेन्नई फॉर अनमैरिड यूथ टू ज्वाइन एज अग्निवीर वायु। The tests will be held for men from Tamil Nadu, Puducherry, including Yanam, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep Islands on 2nd and 3rd September. Well, for male candidates from Telangana and Andhra Pradesh, the tests will be held from 27th to 28th August. Male aspirants from Kerala and Karnataka, they can attend the test from 30th to 31st of August. And the venue for both men and women, and men's, it will be from 5th and 6th. And this will be at the 8 Airmen Selection Centre, Air Force Station, Tambaram. Candidates should have passed 10+2 or equivalent examination in any stream from the education boards recognised by the central, state or union territories with a minimum of 50% marks in aggregate and 50% marks in English. Listeners, now we are heading to Bengaluru. The Bengaluru Dragons began their campaign with a 33-run victory over the Gulbarga Mystics at the Maharaj Trophy, which is KSCA T20 match at the Sri Kantadatta Narasimharaj Wadiyar Cricket Stadium in Mysuru yesterday. McNeil Noronha's fiery half-century of 53 started with 3 fours. His half-century, it was studded with 3 fours and 4 sixes, powered the Dragons to 180 for 8. Skipper Shreyas Goyal and Kranti Kumar took a haul of 3 wickets, giving victory on a platter. Prithviraj from the Mystics returned impressive figures of 3 wickets, conceding 21 runs and then contributed 20 runs for his side. Let's now quickly head to Hyderabad. Well, Telangana has kicked off a mega deworming drive for about 1 crore children across the state, coinciding with the National Deworming Day yesterday. Health Minister Sidamodar Raj Narsimha began the campaign by administering the Albendazole 400-gram tablet to the children at the Telangana Social Welfare Residential School and Junior College for Boys in Sheikhpet in Hyderabad. This happened, listeners, yesterday. And there is another update that I have about Hyderabad, and this specifically focuses on Har Ghar Tiranga and Tiranga Yatra. Well, yes, the Independence Day, it is approaching us, and Telangana BJP state unit has announced plans to celebrate Independence Day with Har Ghar Tiranga and Tiranga Yatra to foster national pride and unite citizens in commemorating India's freedom struggle. BJP state president N. Ramchandra Rao said the party was preparing for events in Hyderabad and across the state, encouraging every household to hoist the tricolour by August 15, marking the 6th year of the campaign. This is the 6th year of the campaign. Ji.
और शगुन, बात करें अपने दिल्ली और मुंबई और कोलकाता महानगरों की, तो जो दिल्ली की पहली खबर है वो भी हर घर तिरंगा अभियान से ही जुड़ी हुई है।
ग्रेट।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा आयोजित हर घर तिरंगा फिल्म महोत्सव नई दिल्ली में शुरू हो गया है। ये महोत्सव स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत 11 से 13 अगस्त तक सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में आयोजित किया जा रहा है। 3 दिवसीय महोत्सव का उद्देश्य लोगों में देशभक्ति की भावना को जागृत करना है। इस अवसर पर दिल्ली के कला और संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान देश के हर घर को एक ध्वज के नीचे लाएगा। उन्होंने कहा कि इस अभियान से लोगों में देशभक्ति की भावना मजबूत होगी और भाईचारा बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि इस फिल्म महोत्सव के अंतर्गत राजधानी में देशभक्ति की 11 फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी।
शानदार प्रयास है ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का और NFDC का। देश के 4 शहरों में देशभक्ति की फिल्में दिखाई जाएंगी। दिल्ली में सिरी फोर्ट में इसका आयोजन किया गया है। 11 राष्ट्रभक्ति से पूर्ण फिल्मों का यहाँ पर दिखाया जाएगा लोगों को, और दिल्ली के कोने कोने से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। हर घर तिरंगा का संदेश प्रधानमंत्री जी ने दिया है। लाखों लाखों घरों में इस वक्त तिरंगे लगाए जा रहे हैं, और ये जो अंतर्राष्ट्रीय वातावरण हो या देश का वातावरण हो, इसमें देशभक्त जो है वो पूरी तरह से एक स्वर्णिम विकसित भारत के निर्माण को लेकर संकल्पित हैं, और उसी भावना को इस प्रकार के अभियानों के द्वारा मजबूत किया जा रहा है।
बिल्कुल शगुन, जो हर घर तिरंगा अभियान है वो किस तरह से मोटिवेट कर रहा है हम प्रदर्शित करें देशभक्ति की अपनी भावना को, और जरूर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने घरों पर झंडे फहराएं, और जैसे कि अपील की गई है अपनी सेल्फीज अपलोड करें।
जी, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यू नो लिसनर्स दैट वी एजुकेट द फ्यूचर जनरेशंस ऑन द सैक्रिफाइसेस व्हिच वर मेड ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट, एंड आई थिंक दिस इज स्पेसिफिकली वेरी गुड इनिशिएटिव टू फॉस्टर दोज फीलिंग्स अमंग्स द youth and everybody, right?
जी बिल्कुल शिगुन, और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आवारा कुत्तों को स्थायी रूप से आश्रय स्थलों में भेजने के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का स्वागत किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में इस समस्या के बहुत गंभीर होने के कारण ये आदेश महत्वपूर्ण है। उन्होंने व्यापक सुव्यवस्थित योजना के माध्यम से इस समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कुत्तों के काटने और रेबीज को नियंत्रित करने के लिए आवारा कुत्तों की नसबंदी कर स्थायी रूप से आश्रय स्थलों में भेजने के कड़े निर्देश जारी किए हैं। पीठ ने 8 सप्ताह में कुत्तों के लिए आश्रय स्थल बनाने, उचित संख्या में कर्मचारियों और CCTV निगरानी की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया। एक और खबर दिल्ली से। दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह ने कल नगर निगम के शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 27 दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर के हंसराज गुप्ता सभागार में आयोजित कार्यक्रम में श्री सिंह ने 13 दिवंगत शिक्षकों के आश्रितों को भी टीचर वेलफेयर फंड की राशि के चेक दिए। और अब बढ़ते हैं मुंबई की ओर। महाराष्ट्र में आधिकारिक स्वतंत्रता दिवस समारोह मुंबई के राज्य सचिवालय में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सुबह 9:05 पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। पुणे में राज्यपाल ध्वजारोहण की अध्यक्षता करेंगे। प्रशासन ने उन मंत्रियों की सूची जारी कर दी है जो महाराष्ट्र के जिला मुख्यालयों पर ध्वजारोहण करेंगे। और महाराष्ट्र सरकार ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से राज्य भर में लाइसेंस प्राप्त स्कूल वैन के संचालन को मंजूरी दे दी है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने कहा कि नए स्कूल वैन कोड के अंतर्गत महाराष्ट्र ऐसी वैन सेवा देने वाला पहला राज्य होगा। इन वैन में GPS ट्रैकिंग, CCTV कैमरा, फायर अलार्म सिस्टम, स्पीड गवर्नर, पैनिक बटन जैसी सुरक्षा सुविधाएं होंगी। और नाशिक में खाद्य और औषधि प्रशासन मंत्री नरहरी जिरवाल ने महाराष्ट्र का त्यौहार खाद्य सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता अभियान शुरू किया। अगस्त से दिवाली तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य त्योहारों के मौसम में बिकने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। श्री जिरवाल ने अधिकारियों को मिठाई, तेल, दूध, घी और अन्य उत्पादों की जांच करने और नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। और एक खबर कोलकाता से भी है शगुन
जी।
कोलकाता के एस्प्लेनेड इलाके में बेहतर पुलिस निगरानी के लिए आधुनिक नियंत्रण कमांड चौकी स्थापित की जाएगी। इससे लोगों की आवाजाही पर निगरानी और आपातकालीन कार्रवाई और भी आसान हो सकेगी। इस चौकी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। श्रोताओं, अब आपको देते चल रहे हैं मौसम का हाल। शुरुआत एक बार फिर दिल्ली से। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां गरज के साथ वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान के 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान के 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं मुंबई में बादल छाए रहेंगे, वर्षा के साथ तूफान की संभावना है। न्यूनतम तापमान के 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान के 32 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। कोलकाता में भी बादल छाए रहेंगे, गरज के साथ बौछारे या हल्की वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान के 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान के 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और शगुन, आपके पास महानगरों की मौसम की क्या जानकारी है?
Yes, sir, Firuzi, I'll again begin with Chennai, and it's much the same there also. Moderate rain possibility is there. Chennai is expected to have partly cloudy sky with possibility of thunderstorm as well. The minimum temperature was 26 degrees Celsius and maximum will be around 35 degrees. Bengaluru is expected to have a generally cloudy sky again with moderate rain. The minimum temperature was 20 degrees Celsius and maximum it will be around 27 degrees. Hyderabad is expected to have a generally cloudy sky with a few spells of rain or thunder showers. The temperature, it will hover between minimum of 29 degrees and maximum of 30 degrees Celsius.
और श्रोताओं, अब समय है उस सेगमेंट का जहां हम आज के दिन यानी जो आज की तारीख है उसके इतिहास में गोती लगाते हैं, किताबों के पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं कि आज का दिन खास क्यों है।
जी,
तो शगुन, सबसे पहले एक दिवस का हमने पहले जिक्र किया, एक दिवस का अब जिक्र कर लेते हैं।
जी,
आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है। इसका उद्देश्य विश्व भर में युवाओं से संबंधित मुद्दों, चुनौतियों और अवसरों पर ध्यान केंद्रित करना तथा युवाओं की सक्रिय भागीदारी को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय विकास में बढ़ावा देना है। 1999 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संकल्प पारित करके इस दिवस को मनाने का निर्णय लिया और पहली बार वर्ष 2000 में पहली बार इस दिवस को मनाया गया। और भारत के संदर्भ में देखा जाए तो युवा बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं।
यस, द यूथ इज मूविंग फॉरवर्ड विद सेल्फ बिलीफ एंड आई थिंक वी वुड आल्सो टेल आवर लिसनर्स, लेट्स आल्सो टेल आवर लिसनर्स अबाउट द थीम फॉर इंटरनेशनल यूथ डे 2025। इट इज local youth actions for the SDGs and beyond, and this theme, it focuses on making young people equal partners in building a future that is socially, economically fair and strong, and also environmentally fair. Also, it should be remembered that youth isn't just an age, it's an attitude. So whether you're 15 or 35, if you believe in building a better world and vibing with hope, you're part of this movement. And we were also talking about World Elephant Day in the beginning as well. So yes, listeners, well, the theme for this year is Matriarchs and Memories. Through this combined theme, the wisdom of elephant matriarchs is combined with the dedication of human protectors. Also, did you know, listeners, elephant is the natural heritage animal of India, and they are very well known for their exceptional intelligence and also boasting the largest brain size of any land animal.
और शगुन, विश्व हाथी दिवस के अवसर पर आज राष्ट्रीय उत्सव तमिलनाडु के कोयम्बटूर में मनाया जाएगा। ये उत्सव पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा तमिलनाडु वन विभाग के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है।
How wonderful.
जी बिल्कुल शगुन, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसमें वन्य नीति निर्माता, वन्य जीव विशेषज्ञ और समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि मिलकर हाथियों के संरक्षण और मानव हाथी संघर्ष से निपटने के तरीकों पर चर्चा करेंगे।
जी,
और शगुन, अब आगे बढ़ते हैं कि देखते हैं कि आज के दिन और क्या क्या खास हुआ था।
We are taking our listeners way back in time.
जी बिल्कुल, साल 1765 में आज ही के दिन इलाहाबाद संधि के अंतर्गत भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में दखल की शुरुआत हुई। 1831 में आज ही के दिन नीदरलैंड और बेल्जियम के बीच शांति समझौता हुआ। 1833 में आज ही के दिन अमेरिका के शिकागो शहर की स्थापना हुई।
In the year 1877, astronomer Asaph Hall, he discovered Deimos at the US Naval Observatory. Deimos is the smaller of Mars's two moons. And in this year as well, American inventor Thomas Alva Edison, he made perhaps his most original discovery, the phonograph, and his early recordings were indentations embossed into a sheet of tin foil by a vibrating stylus. So he made these the phonograph's discovery.
1908 में आज ही के दिन हेनरी फोर्ड की कार कंपनी ने पहला कार मॉडल बनाया। 1992 में आज ही के दिन उत्तरी अमेरिका के देशों अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में मुक्त व्यापार समझौता हुआ।
In the year 1990 now, fossil hunter Susan Hendrickson discovered three huge bones jutting out of a cliff near Faith, South Dakota.
और श्रोताओं, अब याद कर रहे हैं उन खास हस्तियों को जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्म दिवस है। आज सबसे पहले याद कर रहे हैं गुलशन कुमार जी को, जिनकी आज पुण्यतिथि है। ये प्रसिद्ध निर्माता, निर्देशक और व्यवसायी थे। ये टी सीरीज के संस्थापक थे। गुलशन कुमार का नाम फिल्मी दुनिया की उन हस्तियों में शुमार है जिन्होंने काफी कम समय में ही शोहरत की उन बुलंदियों को हासिल कर लिया जहां पहुंचना हर किसी का सपना होता है। और खास तौर पर शगुन हम गुलशन जी को उनके भजन, उनकी भक्ति लहर के लिए याद करते, तो क्यों ना उनका एक भजन सुन लिया जाए।
जी।
हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार।
Well, yes, listeners, and I think the spiritual environment must be continued with, and we have another bhajan. Let's listen to that also. It's very, very popular.
Tune mujhe bulaya sheravaliye, main aaya sheravaliye.
Tune mujhe bulaya sheravaliye,
And yes, this was his very, very popular bhajan, very, very popular amongst everyone, the bhajan listeners specifically.
बिल्कुल, जब कोई भी धार्मिक त्योहार होता है तो इस भजन के बगैर जो हमारे जागरण होते हैं वो पूरे ही नहीं होते हैं।
True that, sir फिरोजी।
और आज भगवत शरण उपाध्याय जी को भी हम याद कर रहे हैं। ये प्रसिद्ध शिक्षाविद और हिंदी साहित्यकार थे। इन्होंने संस्कृत, हिंदी साहित्य, इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन किया। उपाध्याय जी ने कई महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना की जिनमें विश्व साहित्य की रूपरेखा, कालिदास का भारत, ठूंठा आम, लालचीन, गंगा गोदावरी, बुद्ध वैभव आदि शामिल हैं। भगवत शरण उपाध्याय जी की भाषा शैली तत्सम शब्दों से युक्त साहित्यिक खड़ी बोली है। इन्होंने विवेचनात्मक, भावनात्मक, चित्रात्मक और रेखा चित्र शैली का प्रयोग किया है।
Well, listeners, today I'm also now going to talk about another musician. His name is Lester William Paul. First, we are remembering him today. He has been known as Les Paul. He has been the inventor of guitar, and specifically Les Paul guitar. And he has been playing in the genre of jazz, country and blues themes. And I have this specific song. This is beautiful as it starts with his intro. This is How High the Moon.
आज विक्रम साराभाई जी की जयंती है। इन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। इनका पूरा नाम था डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई। इन्होंने भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। तो शगुन, हम जैसा कि बात कर रहे हैं, आज भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में अग्रणी बनता जा रहा है, तो उसकी जो नींव है कहीं ना कहीं साराभाई जी ने ही डाली।
सो दैट्स व्हाई ही हैज बीन रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम एंड ही हैज बीन ऑनर्ड विद पद्म भूषण इन द ईयर दिस हैपेंड इन द ईयर 1966 एंड पद्म विभूषण दिस वाज पोस्टमसली अवार्डेड टू हिम इन द ईयर 1972 Also, listeners, let's talk about another physicist as well. He is Erwin Schrödinger. Well, he has developed fundamental results in quantum theory, and in particular, he is recognized for postulating the Schrödinger equation, an equation that provides a way to calculate the thermodynamics and also physics of dielectrics. Let's now talk about another musician. Today it's his birthday. I am talking about Mark Knopfler. He was the lead guitarist. He has been the lead guitarist initially of this band Dire Straits, and he has been included, his name has been included into the Rock and Roll Hall of Fame. And this song, this which I have chosen by him, this is called Sultans of the Swing, very, very popular amongst rock lovers.
Shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you're stopping your whole...
आज सामाजिक कार्यकर्ता तेजी बच्चन जी की भी जयंती है। ये प्रसिद्ध साहित्यकार हरिवंश राय बच्चन जी की पत्नी और भारतीय सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन जी की मां थी। इनका जन्म एक सिख परिवार में हुआ और इन्हें अभिनय और गायकी का शौक रहा। कॉलेज के दिनों में इन्होंने कई नाटकों में अभिनय और गायन किया। श्रोताओं, अब समय आ गया है आपसे विदा लेने का। सरफिरोजी और शगुन चोपड़ा को दीजिए इजाजत कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की, पर आप सुनते रहिए आकाशवाणी गोल्ड।
एंड वी थैंक यू सो मच लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन। वी होप यू हैव अ सुपर्ब डे।
नमस्कार।